की बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
राम राम सा ऊँटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊँट पालक भाई ने भूम जी भाई यार
गौरा बेन रख गणा अनगणा राम राम
राम राम गौरा बेन आ गया
भूम जी भाई
हाँ।
जेन बात अमावस आपरी ठोड़ पूनम आपरी ठोड़ इनी भां सिंजा पड़ते ही गौरा बेन और भूम जी भाई चौपाल माए आपरी ठोड़।
अरे गौरा बेन आवा क्यों कोनी अरे आ चौपाल अलूनी सिला तो है कोनी
सोला आना खरी कही बोमजी भाई अलूनी सिला कुण चाटे और चौपाल माए आया तो फायदो ही फायदो है।
अरे गौरा बहन अठे आया एक फायदो तो है कि इतना ज्ञानी पाहुना वे बियासु ज्ञान मिले और दूजो फायदो है
वो कही।
अरे वो फायदा है गौरा बहन आप सु सुनने मिले जूना दुहा तो हमें सुना दो नहीं सगड़ा ऊँट पालक भाई उड़ीक रिया है
बोमजी भाई बैठा हाँ उठारी बात करण ने
हाँ।
तो जूने जमाने रो उठारी मेहता रो एक दुओ सुनाए दू थाने सगड़ा नहीं सुनाए दू है। शक्ति बांधे बीटुली ढीली मेल है लज सठी पेट न लोटियो सठी पेट न लोटियो मुंद न मले अज।
वाह गौरा बहन अरे गौरा बहन थे इन माज की बात करिए बात जूने जमाने माय ऊँटरी मेहतारी और आज जगह पर पावना पधारिया है वास्तव आप बात करना ऊँटरे इतिहास री और वर्तमान री और भी भविष्य री तो ए बाता करण सरो देखो और जानकारी देव सरो आप बीच में पावना पधारिया है डॉक्टर एम एस सानी आप पूर्व निदेशक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में।
तो सगलाओं पहला यार स्वागत करो याने राम राम करला।
बिल्कुल सा डॉक्टर साहब आप रो महारी चौपाल रमायने घन घन स्वागत है और आपने में करा राम राम सा।
राम राम सा भूमजी भाई और गौरव बहन जी।
देखो डॉक्टर साहब भूमजी भाई बतायो की आप पूर्व निदेशक हा राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र रमायने और आप इन केंद्र रमायने 9-10 साल निदेशक रहा क्यों बात के मोटो समय बितायो आप
पूरी सेवा करिए
और बात करी भूमजी भाई इतिहास री तो इतिहास तो देखो माने थोड़ो सिख तो ठा है के पहला समृद्धि रो प्रतीक होता जद बाखड़ रे मायने ऊँट खड़ो होतो घर रे मायने ऊँट होनो समृद्धि रो प्रतीक होतो। हमें तो देखो वीरो रूप ले लियो मोटर गाड़िया है पर देखो ऊँटारी बात ही कहीं और ही तो स्वर्णिम इतिहास थोड़ो घणो माने ठा है पर आप जीतो तो मैं
जाना कोनी
वर्तमान री बात भी करनी है और भविष्य री बात भी करनी है और जब देखो इतिहास स्वर्णिम होनी तो वर्तमान री यात्रा भी सुखद लाग ही रही है और उम्मीद करा हा के भविष्य री कल्पना भी आप सुखद कर सका हा। पर भूमजी भाई देखो आपाने साथे जद पूर्व निदेशक उजवे सानी साहब तो पछे केवणो ही कही।
बिल्कुल
पहला तो छोटो किसी प्रश्न पूछ लू याने कि भाई थोड़ो सी का अपने स्वर्णिम इतिहास रे बारे में बता दे क्योंकि देखो जूना लोग तो है जी को है पर कई लोग है भी कोनी और नुआ नुआ लोग डॉक्टर साहब माने ऊँटारी बात से जुड़ रहा है ऊँट पालक जुड़ रहा है वाने देखो इतिहास जानना घनो जरूरी है।
बिल्कुल सर
ऊँटारो इतिहास रे बारे में मैं आपने वही कहना चाहूँ कि सदियों से हमारे इस मरु प्रदेश में जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है उसमें ऊँट एक अभिन्न अंग रहा है अन्य पशुओं के दुधारू पशुओं के साथ में और इसका हर क्षेत्र में उपयोग होता आया है। बीकानेर राज्य की जब स्थापना हुई थी और बीकाजी जोधपुर से आए थे तो उस वक्त भी उनकी फौज में ऊँटों की एक कैवलरी थी। इतिहासकार जेम्स टॉड ने अपने उसमें राजस्थान के इतिहास में जिक्र आया है कि जो ऊँट के ऊपर जो फौजी बैठते थे या सेना के थल सेना के जवान बैठते थे वो एक का मुंह है जो आगे की तरफ ऊँट के मुंह की तरफ फेस होता था और दूसरे जवान का मुंह है जो पीछे की तरफ होता था ताकि वो पूरी तरह से अपने आसपास के इसमें क्षेत्र में निगाह रख सके। अंग्रेजों के समय में ऊँटों की सेना का ये कैवलरी का इस्तेमाल हुआ है। बीर बाद में ऊँटारो जो है गंगा रसालो जो बण्यो तो बीमे भी ऊँटारो बहुत काम में लिया जाता। हमारी जो गंगा रसाल की जो इकाई थी उसको धारातोल और आपके विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। एक जैसलमेरी एरिया में एक कैमल की एक बटालियन और खड़ी करी गई थी और बाद में 1951 में गंगा रसाले के साथ मर्ज कर दिया और वो गंगा जैसलमेर रसाला कहलाया। ऊँट पानी कम पीता है और चारा भी काफी देर तक बगैर खाए चल सकता है तो इसलिए लंबी दूरी तक इनको थल सेना के जवानों को और उनके सामान वगैरह को ले जाने में अन्य पशु की तुलना में इसका उपयोग उस वक्त ज्यादा रहा चाहे वो सवारी के लिए हो चाहे आपके बोझा ढोने में हो चाहे वो कुओं से पानी निकालने में हो और चाहे वो आपके उसमें घरों में पानी या ढाणियों में पानी पहुंचाने के लिए भी हो। और उसके अलावा उस वक्त अन्य साधन उपलब्ध नहीं थे, तो उस वक्त इसकी वजह से इसका वो यूज अपने डाक पहुंचाने लाने ले जाने में और हमारे गाँव में तहसीलों के अन्य कार्यों के लिए भी इसका उपयोग होता था। और इसके अलावा उस वक्त ये सड़कें साधन बिजली वगैरह नहीं होने से हमारे उस समय में जो गाँव में बारातें जो जाती थी वो बारात भी ऊँटों पर जाती थी। वो उसमें 30-30, 40-40 ऊँट जो है काम में आते थे और सब सजे जजाए और उन पर खूब अच्छी सजावट होती थी। उस पर ही डोली वगैरह साज सामान के साथ बारात जाती थी और एक वो अनोखा उसका एक दृश्य होता था। तो वो एक अलग ही उस समय की महत्वपूर्ण हिस्सा थे। और अभी हमारे जो कुछ वर्षों बाद में जो राजस्थान कैनाल जो बनी है उसमें भी ऊँटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो मिट्टी ट्रांसपोर्टेशन में हो, खुदाई में हो, क्योंकि वहाँ सब और अन्य साधन उस वक्त उपलब्ध नहीं थे, तो इसमें भी ऊँट गाड़ों का और ऊँटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
गौरा बहन, एक बात तो मने अच्छी तरह समझ में आएगी कि ऊँट जो इतिहास में वाकई स्वर्णी में आ अलग बात है कि वक्त इन्हें थोड़ो लारे कर दियो।
लारे तो कर दियो, पर राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र पूरा प्रयास कर रहा है कि लारे कोनी रहेला, आप यात्रा रे माने आगे सु आगे बढ़तो जावेला, बढ़तो जा रहे हो है, जा रहे हो कि नहीं?
बिल्कुल सर। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूँ कि देखो आप लगभग 9-10 साल राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र निदेशक रहे, इस दौरान ऊँटा ने संरक्षण सारू कई कई काम हुआ, ए थोड़ा मारे ऊँट पाल का आप बताओ सर।
संरक्षण वास्ते पहले तो ये देखोगे हो कि हमारे यहाँ ऊँटों की किसी किसी नस्लें उपलब्ध है और हमारे इस क्षेत्र में जो है जिसमें राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, गुजरात भी है, पंजाब भी है, यहीं ज़्यादा अधिकतर ऊँट जो है पाए जाते हैं। केंद्र में इसके बायो मॉलिकुलर जेनेटिक आस्पेक्ट पे भी अनुसंधान किया है और उस अनुसंधान में ये DNA टेक्निक और PCR टेक्निक को यूज़ करके इनमें इन्होंने हमारे वैज्ञानिक ने देखा है कि इसमें नस्लों में क्या फ़र्क है। और इसके लिए हमारे यहाँ एक NATP में परियोजना भी आई थी जिसमें जैसलमेरी ऊँटों के ऊपर, तो उसका पूरा जो है सर्वेक्षण किया गया और उसके करेक्टराइजेशन किया गया, उसके प्रिजर्वेशन के लिए उसमें उसका सीमन भी कलेक्ट करके और उसका क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो कार्य किया गया लिक्विड नाइट्रोजन में। और वो जो है हमने हमारे संस्थान से वहाँ करनाल में जो हमारा जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको भेजा गया, जो आज भी प्रिजर्व है ताकि भविष्य में इन नस्लों को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं।
ठीक है सर।
और केंद्र द्वारा नर ऊँट भी जो है ऊँट पालकों को दिए गए हैं समय समय पे, ताकि अच्छे नस्ल के ऊँट से उनके जो है प्रजनन के द्वारा जो है नस्ल में वही ब्रीड की करेक्टराइजेशन बनाया जा सके।
पर डॉक्टर साहब देखो ऊँट पालन करे ऊँट पालक तो वे 4 पैसा कमाउंड सारू भी करे, वे चाहे एक बारी आर्थिक स्थिति इनसू चोखी हो जाओ, तो वारी आर्थिक स्थिति चोखी वे ऊँट पालन सु इंद्र सारू आपरे कार्यकाल रे मायने और कई कई काम होया।
आर्थिक स्थिति ऊँट पालकों की सुधारने के लिए केंद्र ने ऊँट के दूध के ऊपर अनुसंधान काफी किया है गत वर्षों में और उसके बहुत से उत्पाद भी तैयार किए हैं ताकि ऊँट पालकों को इसमें ज्यादा से ज्यादा आगे लाके और उनका आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके और उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो सके। तो उसमें हमने कई उत्पाद तैयार किए हैं और वो जो है उनको किसानों को वहाँ फार्म में केंद्र में लाके हमने दिखाए भी हैं, उनको बताया भी है और उसके लिए हमने मिल्क पार्लर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में ऊँट पालकों में प्रचार प्रसार का उसमें वो प्रयास किया है। और इसके साथ में हमने केंद्र में एक उष्ट संग्रहालय भी जो है स्थापित किया है और उसमें ऊँटों के जो आमदनी बढ़ाने के लिए और उनके जो है उसमें अच्छे फायदे के लिए हर तरह के ऊँटों से संबंधित जो है उसमें सामान और आइटम का डिस्प्ले किया है और ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उसका भी किया है, जो चाहे वो पोषण से संबंधित हो, चाहे नस्लों से संबंधित हो, चाहे ऊँट के दूध और उसके उत्पाद से संबंधित हो, चाहे आपके ऊँट के हड्डियों से जो सामान बनाया है या बन रहा है उससे संबंधित हो, तो ये सारा ही जो है जानकारी हमने वहाँ बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी और हमारे जो ऊँट पालक भाई हैं उनके लिए भी उसके लिए प्रयास किया है। और इसके लिए हमने जो है केंद्र में एक सेवनियर की कुछ 2-3 शॉप्स भी चालू की है जिससे कि उसमें बाहर बाहर से आने वाले लोग और किसान भाइयों को और उनको जो है ऊंट से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ उपलब्ध है उनको जानकारी भी मिल सके और उनको बेच भी सकें, जिससे बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो भी उसमें काफ़ी रुचि लेके और वो भी उसमें खरीदते हैं। जो भी ऊंट से संबंधित सामान है, चाहे उसके लेदर के हों, चाहे उसके हड्डियों से संबंधित हो या और दूसरे हो, तो उसके लिए भी हमने आमदनी का ये एक किया है। और कैमल राइडिंग का भी हमने केंद्र में जो है उसमें भी शुरू किया है, ताकि जो बाहर से पर्यटक वगैरह आते हैं उनको हम वहाँ ऊँट पे जो है राइडिंग सफारी करवा सकें। तो ये केंद्र की तरफ से ये सारे प्रयास इसी लिए किए जाए गए कि ऊँट पालकों को जो है उनको आर्थिक दृष्टि से और समृद्ध बना सकें।
डॉक्टर साहब माना आप बताओ कि ऊँटनी रो दूध है वो मानव रोगर मानव की काम आवे कहीं?
हमारे मानव में जो कोई बीमारियां हैं ऐसे भी उल्लेख मिले उसको देखते हुए हमने ये अनुसंधान किया किन किन बीमारियों में इसके दूध का जो है फायदा हो सकता है या लाभ मिल सकता है। तो उसमें एक मधुमेह जो बीमारी हमारे बहुत आम है और उसमें इसके दूध की हमने मेडिकल कॉलेज बीकानेर के साथ कोलैबोरेशन में 3-4 ट्रायल किए और ट्रायल में हमने देखा कि जिन बच्चों में ये कैमल का दूध जो कच्चा दूध है वो दिया गया और लगातार 3 महीने तक दिया गया, तो उसमें है जो मधुमेह की जो है लक्षण काफ़ी जल्दी सुधार हुआ और उसमें 25-30% तक सुधार देखा गया और कुछ बच्चों में इंसुलिन की मात्रा में भी काफ़ी कमी आई गई और जो दूसरा ग्रुप था उसमें इस तरह के सुधार नहीं है। और फिर उसके रिवर्स ट्रायल भी किए, उसमें भी इस तरह के हमारे को नतीजे मिले और तपेदिक की बीमारी में भी हमने मेडिकल कॉलेज या मेडिकल टीबी हॉस्पिटल बीकानेर के साथ सहयोग से कार्य किया, उनमें भी हमने जिन मरीजों को ऊँटनी का दूध दिया उसमें जो चाहे उसके आपके बॉडी वेट शारीरिक भार हो या अपने हीमोग्लोबिन हो या उसके जो फेफड़ों में जो इन्फेक्शन के लीजन है उसमें बहुत काफ़ी सुधार देखा गया और वो ट्रायल में हमें लगा कि ऊँटनी का दूध है बीमारियों में भी इसका काफ़ी अच्छा उपयोग हो सकता है और उस अनुसंधान को आगे भी जारी रखने से इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी और फायदा दिया जा सकता है।
बोमजी भाई हाँ जी शुरू करा दियो सानी साहब। तो
बिल्कुल साहब, देखो आर्थिक रूप से भी आपा मजबूत हो सका और दूसरे जो डॉक्टर साहब बताए कि हरी बीमारी में भी दूध बहुत काम रो उपयोगी है।
उपयोगी है नी हाँ। पर देखो जी शुरू करा देनी हाँ। मारी पखाल तो मन जिया कूदे नी जिया जिया मारी पखाल भी कूदन लाग जावे।
गीतड़ले
सारू क्योंकि देखो पावना आवे तो ज्ञान रो भंडार लेर तो पछे पखाल तो गीता सुभर में भी लाऊ ही लाऊ।
बिल्कुल
पर देखो अपने दायरा प्रश्न तो पूछ ला पावना कनु आपा पर उतर भी ले
बिल्कुल
पर गीत जो सुनाऊं नी पखाल मु वो सुनाऊं यारी दायरो।
तो डॉक्टर साहब गवरा बेन आ चावे है कि यारी पखाल मसु निकले आपरी पसंद रो कोई गीत तो आप बताओ आप किसो गीत रो सुनना चाहो।
मारे पसंद रो तो एक हिंदी गानो जिको आपरे फिल्म होसरी 420 रो रमैया अवस्था भैया।
तो आप सुनो सा गवरा बेन नी पखाल मऊ ओ एक फूटरो सो हिंदी फिल्म रो गीत लो।
रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया
मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया
ओ रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया
मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया
ओ रमैया वस्ता वैया
तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या
मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बता भैया रमैया बता भैया पर
देश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल।
इस गांव में दर्द की छांव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये गाती चले,
चांद तारों के तले रात ये गाती चले।
मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया,
ओ रमैया बसावैया।
मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया,
ओ रमैया बसावैया।
मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया,
ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया।
फिर वही एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया,
ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया।
तो सा आभार आप सुनियो डॉक्टर साहब री दायरो गीतर लो गवरा बैनी पखाल छु।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इड बेला आप से सुन रिया हो ऊंटारी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति। और आज जानकारी देने सारू पधारिया है डॉक्टर एम एस सानी, आप पूर्व निदेशक है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। और आज आप बातचीत करिया ऊंटारे स्वर्णिम इतिहास, वर्तमान यात्रा और भविष्य री संभावना।
बोम जी भाई देखो डॉक्टर साहब ने गीत सुनाया नी, हाँ। भगत मन रे मायने एक बात मारे चाल रही ही, और कोशिश करी के भूलू नहीं और भूली को नहीं देखो, क्योंकि अठे बैठू नी जड़े मन रे मायने आई रेवे के ऊंट पालका रे मन रे मायने जिको भी सवाल वे नी विने आपा चौकी तरीके से पूछ सका।
बिल्कुल।
और डॉक्टर साहब अठे पधारे आपने आप पूछा की आपरे समय रे मायने देखो कई मुख्य अनुसंधान परियोजनाएं भी रही वेला, तो वे किसी किसी कई कई सुविधा ही जिको की ऊंट पालका ने मिली ही।
उस समय केंद्र में एनएटीपी एक प्रोग्राम जो आया था उसके अंदर अलग अलग हमारे जो क्षेत्र हैं उसमें कई परियोजनाएं आई थी, जैसे उसमें ऊंट पोषण से संबंधित एक परियोजना थी जिससे कि जिसके द्वारा हमने जो है ऊंटों की जो है लवण की ईंटें भी तैयार की गई, उसके चारे के प्रोडक्ट भी तैयार किए गए ताकि ऊंट पालकों को जो है जो लवण की कमी जहाँ आती है वहाँ कैसे इसका फायदा मिल सके और चारे को कैसे और ज्यादा इसमें है ऊँटों के लिए अच्छा बनाया जा सके, जो उसका वो एक ये परियोजना थी। एक अनुवांशिक में भी जो है हमारे यहाँ परियोजना इसमें एनएटीपी के माध्यम से आई थी, और इसके अलावा प्रजनन क्षेत्र में भी हमारे यहाँ इसकी एक योजना आई थी जिसमें हमने ऊँटों से संबंधित जो भी है, चाहे नर ऊँट से संबंधित हो चाहे मादा ऊँट से संबंधित हो, उसमें जो अलग अलग हार्मोन है एस्ट्रेडोल है या टेस्टोस्टेरोन है उसका क्या क्या लेवल रहता है किस समय में, उसके ऊपर काफी अनुसंधान का कार्य किया गया। और उसके अलावा हमने जो है इसमें रिप्रोडक्शन में भी जो है इस परियोजना का कार्य किया गया है। तो ये जो मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं उस समय आई है जो केंद्र में जो पहले से परियोजना चल रही थी उससे अलग थी, और इस पे जो है काफी अनुसंधान का कार्य उस वक्त किया गया है। और इसके लिए हमने जो छात्र बाहर से आते थे छात्र छात्राएं उनको भी हमने काफी प्रशिक्षण दिया गया है जो तीन तीन महीने का है, चाहे वो अनुवंश सांख्यिकी में हो, चाहे ऊंट स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे ऊंट के पोषण से संबंधित हो, और उसमें लेबोरेटरी टेक्निक को कैसे किया जाता है, और उनको हमने जो है उसमें करके 3-3 माह में उन्होंने अपना एक एक छोटा विषय लेके अनुसंधान में काफी सहयोग दिया है।
और अब मैं डॉक्टर साहब आपसे वो जानना चाहूँगा कि ऊँटा को और ऊँट पालकों की वर्तमान जी की यात्रा है बात सुखद रहे और भविष्य वो भी स्वर्णिम रहे, इन सब आप ऊँट पालकों से कहीं क्यों चाहो और आपने कहीं लगे
के लिए मेरा यही सुझाव है कि अब जो वर्तमान में परिस्थिति है उसमें जो हमारे पारंपरिक ऊंट पालन की विधियां या जो भी था उसके साथ कुछ दूसरी चीजें भी जोड़ने की आवश्यकता है। ऊंटनी के दूध के ऊपर और अनुसंधान और इसके जो पाद तैयार किए हैं और जो इसका मानव बीमारियों में इसकी उपयोगिता है उसको और आगे बढ़ा के ताकि उसमें जो लोगों में हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकें और उसके खास जो बातें हैं उनको बता सकें कि भाई किस किस तरह से इसका ऊंटनी के दूध का या उत्पाद का या क्या फायदा हो सकता है जिससे कि हमारे ऊंट पालकों को भाइयों को आर्थिक रूप से और हम समृद्ध बना सकें। और इसके अलावा इम्यूनोजेनेटिक इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है जिसमें कि हम ऊंटनी के ऊपर दूसरे संस्थानों के सहयोग से इसके जैसे कोई टीका बना सकें या इसका कोई ऐसा वैक्सीन तैयार कर सकें जिससे कि ऊंटनी का दूध ऊंटनी का उपयोग जो है आगे भविष्य में है हम कायम रख सकें और इससे हमारे किसानों को और अनुसंधान दोनों क्षेत्र में भी फायदा मिले और हमारे जो मानव रोग हैं उनके लिए भी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उसमें ये कार्य चल रहा है और आगे भी इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है।
अब चलती चलती बेला डॉक्टर साहब मैं आपसे वो पूछना चाहूँ कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जिका भी काम काज है वे प्रदेश से ऊंट पालक भाइयों वास्ते किसा के
मेरे हिसाब से वो काफी जो ऊंट पालकों के लिए है काफी लाभदायक है फायदेमंद है और उसके लिए हमारे जो ऊंट पालक है किसान भाई है समय समय पर उनको जो भी कोई उसमें ऐसी और जानकारी की जरूरत है तो हमारे केंद्र में जो है विषय विशेषज्ञ बैठे हैं उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी शंकाएं हैं उसका समाधान वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं और उसमें बीमारियों से संबंधित जो ऊंटों में है उसके लिए भी वहाँ हमारे यहाँ जो है स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं उसके लिए भी वो जानकारी वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
तो एक बहुत ही अच्छी बात है साहब।
बोम जी भाई देखो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र तो आपरा प्रयास करे ही करे है साथ साथ है सानी साहब उम्मीद करे है कि ऊंट पालक जी को है वे भी जागरूक रहे और उष्ट अनुसंधान केंद्र जावे और जिको भी खुदरे मन रे माने शंकावा है वीरो समाधान बैठे जार ले सके है प्रशिक्षण ले सके है जानकारियां ले सके है कोई भी काम वे नहीं तो बैठे जावे वाने जानकारी जरूर जरूर मिलेला। और देखो आपा भी उम्मीद कर रहा के ऊंटा रो जो को इतिहास स्वर्णिम हो तो वर्तमान भी स्वर्णिम है और भविष्य भी स्वर्णिम रहेला।
बिल्कुल सा। और अब देखो गौरा बहन बखत हो रही है कागदारो और इन सारू आपने चालनो पड़सी डॉक्टर शरदचंद्र मेहता रखने
पहला सानी साहब ने धन्यवाद तो
देवनो पड़ी सा। डॉक्टर साहब देखो आप चौपाल में पधारे और हमारे ऊंट पाल और ज्ञानवर्धक जानकारी दी इन सर डॉक्टर साहब मैं आपने करा गणगुण धन्यवाद और आपने मैं करा राम राम सा
राम राम सा बहुत बहुत धन्यवाद।
बोम जी भाई
हाँ
डॉक्टर एम एस सानी साहब ने तो धन्यवाद दे दियो
बिल्कुल
जानकारी ले ली जी सोरो हुई गयो पण ए जिकारा कागद आयोडा नी वारा जी सोरो करावणो है के नी करावणो है
बिल्कुल करावणो है रठ बैठिया पार को पड़ी लो उठो चलो मैं
चलो चलो पण चलो कठे आ तो बताओ
अरे उष्ट अनुसंधान केंद्र चाल है डॉक्टर शरद मेहता जी खने
शरद चंद्र जी मेहता कने चाला उधरा ले उन्ने राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र तो हमें चलो मोड़ो के
तो उठो होने
उठो उठो
लो सा ए देखो पगाथिया चढ़ता चढ़ता थार तो सांस ही आप गयो ए अबे बांडो तो खड़काओ
भाई बांडो खड़काओ तो मारो सांस कोनी भरी जे और ना मारा हाथ दूजे हाँ। क्योंकि हमें देखो इतो भरोसा हो गयो है कि शरद चंद्र जी मेहता जने आपा जावा नी
हाँ।
तो आपा ने उठला दे उन्ने हाजिर रहे हाँ।
लो सा राम राम डॉक्टर साहब
राम राम
राम राम बोम जी भाई राम राम गौरव
डॉक्टर साहब देखो भेर में कागदारा डिगला लेर आ गया आपरे सामी क्योंकि देखो आपना जिका भी ऊंट पालक है नी वे आजकल लिखे मोकड़ा कागदिया और वे आपरी समस्या वा लिखे कागदारे मायने और मैं हाजिर हो गया आपरे सामे यारा उथरा ले उन्ने तो पेड़ो कागदियो बाच लू
हाँ, हाँ, बिल्कुल
ओ कागद है देखो श्री शोभा राम जीरो रेबारियारी डाणीसू गांव खेजड़ला बिलाड़ा जोधपुर सू। देखो भूमजी भाई ये सवाल एक कौन पूछ रिया कागदियो लिखे एक और सवाल पूछे तीन तो पहला एक सवाल पूछू।
हाँ।
ये लिखे है कि सांड दूध नहीं दे रही है, कई करूँ?
देखो सर, जब बच्चा होता है तो सांड सामान्यतया दूध देती है, पर कभी कभी दूध उतरता नहीं है, और जब दूध नहीं उतरता है तो आदमी को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। एक तो ये पशु चिकित्सक के पास जाए, और वो इंजेक्शन पशु चिकित्सक के माध्यम से ही मिल सकता है। वो इंजेक्शन अगर पशु चिकित्सक लगाएगा तो दूध आना चालू हो जाएगा। दूसरा ये कि कई बार उसमें भी दिक्कत होती है, तो एक सेडेटिव होता है जिससे थोड़ा सा ऊंट को नशा सा आता है, जो सांड होती है उसको थोड़ा सा नशा आता है, और इसका नाम है एसीटेजोलामाइड। ये 3 से 5 ml पशु चिकित्सक की सहायता से लगाएं। इससे जब वो थोड़ी सी सुस्त होती है और बच्चे को अगर कोशिश करते हैं या दूध निकालने की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे भी उसका दूध उतर जाता है। और इसमें 1-2 दिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन दवाई के साथ, और पशु चिकित्सक की सहायता से ये काम करें तो इनको जरूर फायदा होगा और ऊंटनी दूध देगी।
और दूसरा जो प्रश्न है वो है डॉक्टर साहब के बच्चे रो रख रखाव क्या करा?
देखो साहब, इसमें क्या हो गया कि बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, तो ऊंट में एक विशेषता है कि अगर दूसरी कोई सांड है, या तो उसका अगर बच्चा मर गया हो या चाहे उसका बच्चा हो भी, अगर इस बच्चे को उसको सूंघा देते हैं उस सांड को, और कई बार वो सांड उसको अपना लेती है, तो अगर वो अपना लेती है तो फिर अपनी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो वो सामान्यतः अपने बच्चे की तरह उसको दूध पिला देगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा संभव नहीं हो, तो उनको जैसे अपने आदमी में बच्चों को बोतल से दूध पिलाते हैं, उसी तरह बोतल में जो ऊपर वो बिटनी लगी होती है उसमें दूध पिलाएं। करीब 1 से 1.5 लीटर नवजात बच्चे के लिए बहुत है पूरे दिन में, लेकिन बार बार पिलाएं, मतलब दिन में 4-5 बार 6 बार उसको पिलाएं, थोड़ा थोड़ा पिलाएं, और ऐसा करने से उसकी सेहत भी बनी रहेगी और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा और सकुशल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक भ्रांति भी है कई लोगों की, कि वो ये कहते हैं कि अगर दूसरी ऊँटनी का दूध पिलाएंगे तो बीमार हो जाएगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस तरह कोई बीमार नहीं होता है, ये रोजमर्रा की बात है। लेकिन हाँ, उसको और कोई बीमारी हो उसका जरूर ध्यान रखें, इस दूध से वो बीमार नहीं होगा।
एक सवाल और लिखे है डॉक्टर साहब, है तो अब देखो बात ही ले वहाँ क्यों। लिखे है कि बच्चे ने कुत्ते काट लियो भी रो कहीं करा?
देखो, कुत्ता ने अगर बहुत छोटे बच्चे होते हैं और कुत्ते 2-3 अगर उस पे आक्रमण कर देते हैं तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर कुत्ता पागल है जब तो अपने को उसको पशु चिकित्सक की सलाह से टीके लगवाने ही लगवाने हैं। लेकिन अगर वो पागल नहीं है तो भी उस घाव को अपने को साबुन से धोना है और घाव को साफ सुथरा रखना है। उसके बाद भी जो नियमित सफाई है, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट के माध्यम से करे या किसी भी और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से करे, वो करे, और घाव का पूरा रखरखाव करे, और उसको किसी न किसी कपड़े से, साफ कपड़े से ढक के रखे ताकि मिट्टी उस पर अनावश्यक नहीं लगे। घाव ज्यादा बड़ा हो मलम लगाए और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन पशु चिकित्सक की सलाह से लगाएं तो उसको जरूर फायदा हो।
बोम जी भाई देखो, आज तो सुबह राम जी रोज काम वेला, बाकी कागदिया तो मने बेड़ा कर रखना पड़ी क्योंकि भगत री कमी है।
बिल्कुल सा,
पर देखो और भी लोगों जी को कागज लिखे है नी, अगले शुक्रवार ने मारो उतला फेरू ले वाला है। शरद चंद्र जी हाजिर रहे वेला अपना उतला देव ने, पर देखो भगत रो तो ध्यान आपने रखना ही पड़ेगा क्योंकि भगत रा भाया मोती नीप जे है।
तो हमें डॉक्टर शरदचंद मेहता साहब ने धन्यवाद देवा। डॉक्टर साहब आपने घनो घनो धन्यवाद, और फिर हाजिर हो साहब रखने। और अब ऊंट पालक बहने ठिकाना बता दूंगे,
वो तो बताना ही पड़ी।
ठिकाना लिखो सा, ऊंटारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर, और माने आपरे कागदारी अडीक रेवेला सा। राम राम सा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
बाता आकाशवाणी बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।